అమాని త్వామజంది త్వాం పునః అహింసా శాంతిరాజవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థిరమాత్మవినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మన అహంకార జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శన ఆసక్తిర్నా విశ్వసంగ పుత్రదారా గృహాదిష నిత్యం చ సమచిత్తిత్వం ఇష్టానిష్ట పపాదిషు మయి చాలన్య యోగేన భక్తిరభ్యా విచారణే వివిక్త దేశ సేవిత్వం రతిర జన సంసిద్ధి అధ్యాతం జ్ఞానం నిత్యాత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతజ్ఞానం ఇతి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యతో అన్విత వినమ్రత దంభహీనత అహింస సహిష్ణుత సరళత ప్రమాణీ గురు కే పాస్ జానా పవిత్రత స్థిరత ఆత్మ సంయమ ఇంద్ర తృప్తి కే విషయం కా పరిత్యాగ అహంకార కా అభావ జన్మ మృత్యు వృద్ధావస్థ తథా దుఃఖ దోషం కీ అనుభూతి వైరాగ్య సంతాన స్త్రీ ఘర్ తథా అన్య వస్తువు కి మమతా సే ముక్తి అచ్చీ తథా బురీ ఘటనాం కే ప్రతి సంభావ మేరే ప్రతి నిరంతర అనన్య భక్తి ఏకాంత స్థాన మే రహనే కి ఇచ్ఛా జన్ సమూహ సే బిల్గావ ఆత్మ సాక్షాత్కార కి మహతా కో స్వీకారన తథా పరమ సత్య కి దార్శనిక ఖోజ ఇన్ సబ్ కో మే జ్ఞాన ఘోషిత కర్తా హూ ఔర్ ఇన్కే అతిరిక్త జో భీ హై వే సబ్ అజ్ఞాన హై बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो भगवद गीता के ठारू पूरे संसार को देने वाले जगत गुरु शल प्रभुपाद उसको देखो सो गई है पीछे क्या कर रही है तो ये जो शब्द भगवान ने कहे हैं इन शब्दों में से एक एक शब्द विचारने योग्य है और जीवन में धारने योग्य है मृत्यु का स्मरण करने के लिए तो भगवान ने कहा उसके दर्शन करो और मृत्यु से पहले एक बात और कही भगवान ने, अहंकार का अभाव, अहंकारी होना चाहिए। ये अहंकार है क्या और आया कहां से? श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं अहंकार भी दो प्रकार का है, एक मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, क्या मैं ये शरीर हूं, ये अच्छा नहीं, ये नर्क में ले जाने वाला है, और एक है सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीवात्मा हूं, वो भगवान से मिलाने वाला है। तो हम लोगों को सच्चा अहंकार, अहंकार तो रहेगा ही, पर मिथ्या अहंकार खत्म करना है। भगवान ने कहा गीता में कि ममी वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश अंश सनातन है। लेकिन फिर अहंकार कहां से आया? मन श्रेष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति में स्थानी कर सकते, हम जो छह इंद्रियों के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श और छठा मन इनके अधीन हो गए। इनके अधीन क्या हुए? इनके अधीन इसलिए हुए क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ के मैं शरीर संबंधी कार्य ही करता रहा, और शरीर संबंधी कार्य इसमें कौन सी बुराई के पड़ी? सबसे बड़ा बुरा शरीर संबंधी कार्य है विषय वासनाएं। मेरा मन जो स्त्री के चिंतन में लगा हुआ है, स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा हुआ है, यही नरक है। इसी से अहंकार पैदा हुआ। देखो लोग बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, टीवी पर आप देखते हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये जो बुरे कर्म है ना, स्त्री चिंतन, स्त्री का संग, ये छुपे नहीं रहते, इनको कुछ छुपा नहीं सकता, ये प्रकट हो जाते हैं। वो टीवी पर बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, टीवी वाले बता देते हैं ये काम किया उसने, ये पाप किया, बस वो प्रकट हो जाते हैं। तो अभी महाप्रभु के समय में एक घटना घटी। महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए हैं अपने भक्त के रूप में भक्ति सिखाने के लिए। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, महाप्रभु है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं। भेद है हमारे मनो में, मन से आप नहीं मारे। कई लोग कहते हैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु संत थे, बड़े बड़े प्रवक्ता, उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, पर प्रमाण भागवत है। क्या वो बात आज मैं दूसरी कर रहा हूं गुरु कृपा से। तो एक क्या घटना घटी, दक्षिण भारत पे थे भगवान। देखो उत्तर भारत में भगवान वृंदावन तक आए, दक्षिण में भी गए। भगवान जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण, समार्थ, समार्थ ब्राह्मण बड़े विद्वान होते हैं, उन विद्वानों को सारी गीता कंठस्थ थी, सारी गीता, गीता के श्लोक कंठस्थ। अभी भी कई लोग ऐसे मिलते हैं प्रभुपाद के समय में मेरे सामने की बात है मुंबई की, एक मेरे ख्याल में जर्मन भक्त था, तुम्हारे गुरु भाई ने कहा उसको ले आया प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद उसको पूरी गीता मुझ वाणी याद, प्रभुपाद ने कोई ध्यान ही दिया गीता से याद आया, ये बड़ा महान है, मेरे सामने की बात। तो इसी प्रकार ये जो स्मार्ट ब्राह्मण जिन्हें गीता कंठस्थ, ये लोग हंसल हैं। कड़कड़ के वासी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं, भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो? इशारा किया कि बैठा हुआ ब्राह्मण था, वो भी समार्थ था लेकिन बेचारा अनपढ़ था, अनपढ़ रह गया। उन्होंने कहा कि ये देखो ये है ब्राह्मण, गीता ने हाथ में ऐसे पकड़ी है जैसे ये इसको पढ़ रहा है, पर ये अनपढ़ है, इसको पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए वो हंसी कर रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो कड़कड़ के बाद ये महाप्रभु भगवान उसके पास गए, उसके पास जब गए तो देखा वो गीता को पकड़ के बेचारा रो रहा है। उसको पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तुम अनपढ़ हो इसलिए नहीं रो रहा मैं, कहते भाई ये लोग हंस रहे हैं इसलिए, कहते नहीं, तो क्यों रो रहे हो तुम? कहते मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, तो मैं गीता जब हाथ में लेता हूं तो गीता के ऊपर भगवान का चित्र है कि भगवान साक्षी बने हुए हैं अर्जुन के। अर्जुन कौन है? भगवान के सखा और भक्त। भगवान ने अपने मुकाबले से कहा भक्तोषि सखा चेति रहस्य मिदम उत्तम, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। भक्त और सखा, तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, वो अनपढ़ ब्राह्मण कह रहा है कि जब मैं गीता में ये फोटो देखता हूं, भगवान है अपने भक्तों के साथ भी बन जाते हैं। देखो क्या, देखो ड्राइवर गाड़ी रोको यहां पर, रज्जू ने कहा ये कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को रोक दो, मैं देखना चाहता हूं ये युद्ध करने वाले कौन है। तो हवा ने रोक दिया, ड्राइवर बन गया ना अपने भक्त, ड्राइवर को बड़ा पद नहीं है लेकिन भगवान कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि भक्त की समझ ठीक है। और मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, भक्त बनना बहुत कठिन है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त बन गया हूं। वो देखो उसको खड़ा करो, देखो सो रही है वो, उनको देख करके ऐसे सर मार रही है, उनको खड़ा करो उसे पीछे ध्यान रखो, अपने सामने खड़ा रखो, उसके आगे सो रही है, वो जगाती नहीं है, बड़ी भक्त जो है कुछ सो, माता में कुछ सोती है उसको जगा दो, उसको खड़ा कर दो, सर मार रही है ये। तो भगवान भक्तों के कुछ भी कर देते हैं क्योंकि भक्तों की समझ ठीक है, ये ठीक समझ होना बहुत कठिन है। जो भक्त बन जाता है वो काम विकार से मुक्त हो जाता है, और केवल भगवान की सेवा करता है। तो मतलब भक्त भगत संबंधी भगवान के संबंधी कार्य करेगा, जैसे अर्जुन घबरा गए परिवार को देखकर उनसे कैसे लड़ू मैं, भगवान ने समझाया क्यों लड़ना है, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, फिर कहा जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। जब समझ में आ गया, अर्जुन कहते हैं मेरा मोह चला गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं ठीक तरह से स्थित हूं और आपके वचनों का पालन करूंगा, यही मैं युद्ध करूंगा अभी। तो भगवान उस ब्राह्मण को कह रहे हैं, वो जब रो रहा है उसने बोला भाई भगवान भक्तों के साथी भी बन जाते हैं, पर जब ये बात मेरे ध्यान में आती है मुझे रोना आता है, भगवान की दया पर कितने दयालु हैं हम, कितने कृपालु हैं अपने भक्तों के लिए, कोई भी पद और बाकी बड़े देखो विचारने की बात है। तो गौरांगना प्रभु कौन है, यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है वो कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। उन्होंने क्या कहा इस बात को सब ध्यान में रखो, उन्होंने कहा कि असली गीता के पढ़ने वाले तुम हो, ये सब पाषंडी जिन्हें सारी गीता कंठस्थ, वो पाषंडी जो अनपढ़ वो असली गीता का पढ़ने वाला। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, गीता का मर्म क्या है, गीता का मर्म है कि विनम्रता, भक्ति, समर्पण, ये है गीता का मर्म। अगर ये किसी में नहीं आता तो बस गीता पढ़ी कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान ने पूरी गीता कंठस्थ जिनको उनको पाषंडी कह दिया, उनको ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हैं, वो अनपढ़ गीता का मर्म समझ गया, गीता का मर्म है भाव और भक्ति, और पूरी गीता पढ़ने वाले अहंकारी हैं, वो उसके हंसी क्यों उड़ा रहे हैं, वो उसको नहीं पहचान पा रहे कि ये भक्त है और हम भक्त नहीं, अहंकार है, अहंकार ये मत होइया। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारी ये पागल हो जाता है, जिसे अहंकार हो जाता है वो पागल है, क्या कोई भी है, मैं हूं, आप हैं, ये है, वो है, स्त्री है, पुरुष है, और इसी अहंकार के वशीभूत होकर ही हम पाप करते हैं, क्योंकि अहंकार से बुद्धि मलिन हो जाती है। जैसे परमाचार्य ठाकुर नरोत्तम दास जी महाराज कह रहे हैं अहंकार मत होइया, अहंकारी जी पागल है। तो ये पागलपन बड़ी कठिनाई से जाएगा, बड़े बड़े विद्वानों का नहीं गया और पूरी गीता पढ़ने वालों का नहीं गया, कई प्रवक्ता हैं लेकिन अहंकार नहीं गया उनका। एक बार जब ये होगी कोई 35 साल की बात, हम विदेश में थे तो मुरारी बापू की कथा चल रही थी, शुरू शुरू में मुरारी बापू वहां आया था, जब राम कथा करने लगे हम भी गए सुनने के लिए, क्योंकि लोको लोग सब जाते थे,
तो वहां एक ब्राह्मण आया, वो भी गुजरात का था आया, तो उसके लिए जो उन्होंने सिंहासन बनाया कि भाई ये ब्राह्मण को सिंहासन, जैसे मुरारी बापू का बड़ा सिंहासन लगाया है, उसका भी सिंहासन लगाया गया। तो अभी मुरारी बापू ने उसको बोलने का मौका दिया, लेकिन उसके बोलने में कोई दम नहीं था। मुरारी बापू मेरे ख्याल पता नहीं ये कोई हल्का ब्राह्मण है या क्या है, भगवान जाने, वो बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण मानता था अपने आप को। तो उसने मुरारी बापू का स्वागत करने के लिए मुरारी बापू उठ के सिंहासन से गया उसके पास, उसने उसका वहां स्वागत किया, उसने प्रवचन किया, लोगों पर कोई प्रभाव नहीं। उसको इतना अहंकार, वो उठ नहीं सकता अपने सिंहासन से। हमारे मंदिर में भी आए, जगह जगह लोग जाते हैं, तो ब्राह्मण है, विद्वान भी होगा, लेकिन अहंकार भरा हुआ है। अहंकार जब मेरे अंदर से नहीं जाएगा, और ये तब जाएगा जब भक्ति का उदय होगा या भक्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे अहंकार कम होता जाएगा। अब देखो कि हम भेदभाव करते हैं, ये अन्य अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हमारा अहंकार बोल रहा है। उसमें दोष भी होंगे, भाई तुम कौन से पूर्ण ब्रह्म हो या तेरे में कोई दोष नहीं है। अभी एक श्री से पिता का कथा सुनाते थे, बड़ी रहस्यमय छोटी सी कथा है। एक राजा था, वो अहंकार रहित था, भक्त था बड़ा। तो रोज वो पुरानी बात है बड़ी, और साधुओं का पूजन करता था। उसे साधुओं को पूजना, उनकी पूजा करनी, आरती करनी, फिर भोजन करना। एक दिन राजा किसी काम के लिए चला गया और महल में रानी अकेली है, तो डाकू थे, बदमाश चोर। उन्होंने सोचा भाई, उनको पता लग गया मैं राजा कहीं गया हूं, अभी राजा महल में है नहीं, रानी अकेली है। तो उन्होंने साधुओं का भेष बनाया, कपटी भेष बनाया, जैसे रावण कपटी साधु बनकर के सीता का हरण किया था। सीता माता भी बेचारी उसको साधु समझने लगे। तो वो साधु, चार साधु थे, चार साधु नहीं, वो बदमाश थे, साधु भेष में चले गए, गए महल में, रानी अकेली है। तो रानी ने उनका सम्मान किया, उन चारों ने पकड़कर रानी को मार दिया, रानी को मार दिया। और महल में जो बारह धन संपत्ति होती है लूटा। अभी देखो जैसे पद्मनाभ मंदिर केरला में धन संपत्ति निकली अंदर से, 1,00,000 करोड़ सोना, हीरे, ज्वाहरात, क्या क्या, 1,00,000 करोड़ बहुत होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अमीर मंदिर अभी पद्मनाभ मंदिर है। वहां पांच उन्होंने खोल दिए हैं तहखाने नीचे के, एक नहीं खोल रहे, कहते इसको खोलने से उपद्रव हो सकता है, पर उसमें कितना माल है अंदर। तो हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया थी, ये जब विदेशी चोर आए सब लूट के ले गए, चाहे वो अंग्रेज थे चाहे मुसलमान थे। हमारे लोगों को, भोले बालों को मुसलमान बना गए, अंग्रेज क्रिश्चियन बना गए, और सब चोर थे, लूट लाट के ले गए इसको। सबसे कीमती हीरा हिंदुस्तान में था कोहिनूर, इतना बड़ा हीरा है, मैंने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा उसको, बड़ा गाढ़ है उसके आगे पीछे। ब्रिटिश म्यूजियम में हिंदुस्तान के हजारों साल हस्तलिखित ग्रंथ पड़े हुए हैं, आज भी बड़े सुंदर हैं। सोने से लिखे हुए कैसे लिखते थे, सोना चमक रहा है उनके रक्तों में। हिंदुस्तान बड़ा ही समृद्ध देश था, लेकिन हमारे पाप कर्म होंगे विदेशियों के आक्रमण से आज बड़ी दुर्गति को यह प्राप्त हो गया है, बहुत हालत खराब हो गई है। अगर हमारा हिंदुस्तान बचेगा तो ऐसे संतों की कृपा से ही बच सकता है जो भगवान के भेजे हुए हैं। तो लूटा अभी सामान बांध के वो जाने लगे, इतनी देर में देवसी लोग से राजा आ गया। राजा आ गया तो जा रहे थे, राजा ने उनको रोका, कहा बैठो भाई, आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं काम पे गया था कहीं तो मैंने सोचा साधु नहीं मिले तो भगवान ने आपको भेज दिया, बैठो मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। वो घबराए गए क्या मैं तो आखिर उनके मुंह से निकल गया कि मैं हम चोर हैं, चोरी करने आए थे, बोला आप कुछ भी हो मेरे लिए साधु हो आप। राजा ने उनको बढ़ाया, कहना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, राजा की दृष्टि अच्छी थी उसको चोरों में भी साधु दिखे। आज हमारी दृष्टि खराब है तो सब कुछ बुरा दिख रहा है, तो मेरी दृष्टि अच्छी होगी केवल भक्ति मां की कृपा से, विषय विकारों की मुक्ति से। ये विषय विकार बहुत ही बुरे हैं। तो आखिर मना करें, लेकिन आप मेरे लिए साधु बिठाया, उनको पूजन किया, उनकी आरती की, उनको जो भी करता था राजा साधुओं का पूजन। तो जब ऐसा किया उसने, राम राम करती हुई रानी भी उठ बैठी जिसको मार दिया था, राजा की भक्ति इतनी थी, रानी जिंदा हो गई। और राजा ने कहा ये किया आपने, जैसे आज के बाद ये एक कर्म नहीं करना जो आप कर रहे हैं। राजा ने उनको उपदेश दिया। तो देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्त बुरे में भी बुरा देख रहे हैं। हम भागवत कथा सुन रहे थे, एक बात आई, एक बहुत बुरे में भी जो है ना भगवान का पास है, हम उसको बुरा देखते हैं, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ भी कहो वो बहुत बुरा है। अरे भाई वो बुरा तो है, तुम कौन से अच्छे हो, तुम कौन से महान हो। भगवान ने गीता में कहा है अपने मुखारविंद से, विद्यापने संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तने शूनि शेव शपाके च पंडिता समदर्शन। असली पंडित कौन है जो भक्त बन जाता है, उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है। जो असली पंडित यानी जो भक्त है, वो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को और कुत्ते को शपा के, और कुत्ते को जो खाने वाला है चंडा वाला, कुत्ते का जो मांस खाते हैं ना वो पंचम श्रेणी में आते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुत्ते का मांस खाने वाले सबसे नीच पंचम, वो पांचवी श्रेणी है उनकी। वो कुत्ते को खाने वाले को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से वो विद्वान ब्राह्मण को देख रहा है, या गाय को देख रहा है, या हाथी को देख रहा है। तो ऐसा क्यों कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला और गाय और ब्राह्मण एक समान कैसे हो गए। तो उसकी दृष्टि ऐसी है कि वो बाहर के शरीर को नहीं देख रहा, इसके अंदर आत्मा को देख रहा है। आत्मा सभी में एक समान है, उसकी दृष्टि अच्छी होगी ना। भक्त क्या असली पंडित है। ऐसे जब भागवत में एक प्रसंग आया तो एक आत्मा कहती हां ये बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा इसको धारण करो जीवन में, मैंने अंडरलाइन करवाया उसको, मैंने देखो उसको। तो अहंकार अहंकार ये हमें पागल कर देता है। आज हम सब अहंकार के भरा भरे पड़े हैं, मिथ्या अहंकार। लेकिन इससे पहले यदि आत्मा मेरा समय समय आ जाए वो तो आ ही रहा है, अंतिम समय निकट आ रहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं की तमाम होती है, सुबह शाम की उम्र खत्म हो जाती है। अभी जैसे तीन चार दिन पहले की बात है, भैया श्री पाश, मैंने कहा तुम मंदिर में नहीं आते, कहते हो मेरा एक दोस्त था वो मर गया, 22 साल का लड़का नौजवान, घर में बूढ़े माता पिता बहन थे, कोई घर में देखने वाला कोई नहीं, ऑटो था उसका अपना ऑटो चला रहा था, कार ने ठोका, कमेस्ट कार ने कोई आर्मी वाले की थी और मर गया बेचारा। 22 साल की कोई गारंटी थी उसको, हमारे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोगों को सोचना चाहिए, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। सबको, बच्चों को भी, बड़ों को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, सबको मृत्यु को देखते रहना चाहिए, मृत्यु के दर्शन करने चाहिए। यानी कब आ जाएगी, आनी है इस बार, कहा न कि मृत्यु तो आनी है, उससे कोई बचा ही नहीं आ जाए, मृत्यु लोक है, मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं, ना मैं ना आप ना ये ना वो। हां पर अगर मैं भक्त बन गया ना, मेरे मन ने विषय विकारों को छोड़ दिया और श्री कृष्ण के चरणों में लग गया, फिर लिए मेरे लिए मृत्यु जो है वो तो चिंता की बात नहीं। फिर कृष्ण कृपा से मैं अंत में कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा। मैं कृष्ण का स्मरण कर पाऊंगा, बस मेरा कृष्ण का स्मरण अगर अंत में हो गया, जीवन सफल हो गया। अंत काले चुमा में वास्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सुधियत्र संशय। भगवान कहते अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये मत सोचो कि अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाऊंगा, ना। हाँ, अगर मेरे पाप समाप्त हो गए, मेरा मन संसार से हट गया, खास करके मेरा मन स्त्री चिंतन से हट गया और कृष्ण के चिंतन में लग गया, फिर कोई चिंता नहीं होती। इसलिए इस अहंकार को समझो और इसको समाप्त करने का प्रयास करो। बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भगवद गीता यथारूप पूरे संसार को देने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? स्मरण से, इसलिए भगवान का केशम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येना माम उपजंती। जो सततम प्रीति पूर्वक भगवान ये ना प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं और सब बातों को ठीक समझेगा। बुद्धि आ गई तो भक्ति आ गई, बुद्धि योग बुद्धि योग आ जाता है। हर समय 24 घंटे भगवान का शरण होना चाहिए। तो फिर भगवान सद्बुद्धि दे देंगे, बुद्धि योग दे देंगे। समझाई? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? टू आस्क ए क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न करना ये बुद्धिमता है। अच्छे प्रश्न करने के ऊट पटांग नहीं। तेरे को प्रश्न है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। और तुम्हारा क्या नहीं, किसी को नहीं लगता मन पर लगे रहना जपते जपते जब मन साफ हो जाएगा फिर लगना शुरू हो जाएगा। तेरा कैसा किस्मत है, किसका मन लगता, कोई है यहां पर? किसी का नहीं। पाप कर्म जब जपते जपते समाप्त, जपते रहना इसको, नाम कानों से सुनते रहना। जब पापों का अंत हो जाएगा फिर मन लगना शुरू हो जाएगा।